आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। नमस्कार, SBS हिंदी से मैं हूँ प्रीति जबल। सीखने सिखाने की या जीवन में आगे बढ़ने की कोई उम्र सीमा नहीं होती, और अगर मुफ्त में सीखने को मिले तो सोने पर सुहागा। हमारी आज की मेहमान हरलीन कौर की कहानी कुछ ऐसी ही है। जब हरलीन कौर ऑस्ट्रेलिया आई तो उन्होंने अपना नर्सिंग करियर जारी रखने की ठान ली, लेकिन सही नौकरी पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। फिर उन्होंने शुल्क मुफ्त टेफ यानी कि फी फ्री टेफ को ज्वाइन किया, जिससे उन्हें आवश्यक कौशल हासिल करने का मौका मिला। अब हरलीन उसी अस्पताल में नौकरी करती हैं जहां उन्होंने अपना टेफ प्लेसमेंट किया था। आपको बता दें कि शुल्क मुफ्त टेफ ऑस्ट्रेलियाई और राज्य सरकारों की एक संयुक्त पहल है। इसके तहत पात्र उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, वृद्ध देखभाल जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इन प्रमुख क्षेत्रों में नौकरियों के लिए तुरंत कौशल प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने टेफ यानी कि टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन के साथ मिलकर ये बीड़ा उठाया है। लेकिन क्या वाकई में ये मुफ्त हैं, और अगर है तो इसके लिए पात्र यानी कि एलिजिबल कौन है, ये जानने के लिए हमने बातचीत की हरलीन कौर से। आपको बता दें कि इस साक्षात्कार के दो अंश हैं। प्रस्तुत है इसका पहला भाग। हरलीन, SBS हिंदी में आपका स्वागत है। सीखने और बढ़ने की बातें तो होंगी, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। आप कहाँ से हैं, आपका अभी तक का सफर कैसा रहा, आप ऑस्ट्रेलिया कब आई?
तो मेरा नाम हरलीन कौर है, मैं पंजाब लुधियाना में से हूँ। तो मैं ऑस्ट्रेलिया शादी के बाद आई थी। तो शादी के आने के बाद हमें एक वीजे के लिए वेट करनी होती है। जब हमें वर्क राइट्स मिल जाते हैं तभी हम ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा मेरा सफर आया है कि जब मेरी मुझे TR मिली लाइक 8th of May 2023 को, तो मुझे ऐसा एक एक्साइटमेंट होगी कि चलो अब हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं, लेट्स आई गो फॉर अ वर्क एक्सपीरियंस थी मेरे अंदर। बट उस वर्क और अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे बहुत सारे कुछ स्ट्रगल करने पड़े, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इंडिया से नर्सिंग करके आई हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत इजी से जॉब मिल जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे थोड़ा सा यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की प्रैक्टिकल जो थिंग्स है उनको थोड़ा अडेप्ट करना था, तभी मैं यहाँ पर जॉब कर सकती थी। तो ऐसी कुछ मेरी जॉब हंटिंग का सफर चल ही रहा था। तो मेरी जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि SSA करके मेरी एक फ्रेंड है, तो उससे बात करके देख, वो तुझे हेल्प कर देगी। तो मुझे उसने बताया कि आप ACT के अंदर में हो तो आपकी सरकार का ना आपको एक फ्री टेफ होता है, आपको कोई भी CIT या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पता करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो उसकी मैंने थोड़ी एजुकेशन ली, थोड़ा रिसर्च करा, रिसर्च करके मुझे पता चला कि कैनबरा के अंदर एक CIT यूनिवर्सिटी है लाइक कैनबरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप वहां पर जाओगे तो आपको वहां पर पूरी गाइडेंस देंगे। तो मैंने वहां पर एक स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस होते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड वहां पर गए। तो मैंने उनको बताया कि SSA करके मेरा वर्क राइट्स है, मैं SSA करके इस वीजे पे हूँ, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वैसे ही कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उससे बातचीत करने के बारे में मुझे पता चला कि अगर आप ACT के अंदर हो, काम करते हो या ACT में रहते हो, तो अगर आप ये इस एलिजिबिलिटी वीजा होता है, अगर आप उस एलिजिबिलिटी वीजा के अंदर आते हो तो आप फ्री फेड टेफ के अंदर इनरोल कर सकते हो। तो ऐसे करके ही मुझे थोड़ा सा पता चला कि ओके, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा, तो मुझे यहाँ पर मैं ऐसे करके प्रॉब्लम आ गई कि मैं ACT में ना काम करती थी ना ही मैं ACT में अंदर रहती थी। तो मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई, क्योंकि मेरे लिए वो जहाँ पर मैं रहती थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो बहुत दूर था जहाँ पर मुझे पढ़ाई करनी होती थी। बस ऐसे करके थोड़ा सा मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने को, बट थोड़ा सा कोशिश करने के बाद मुझे CIT के अंदर इनरोलमेंट होगी और वहां से मुझे थोड़ा धीरे धीरे करके गाइडेंस मिलती रही।
आगे पूछना चाहूंगी कि इस कोर्स करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
कोर्स का एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ, आपकी जो इंडियन की एजुकेशन है और ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है. आपको यहाँ पर इनके हिसाब से एजुकेशन करनी पड़ेगी, बट नो डाउट आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपको हेल्प करती है, बट इनकी जो नॉलेज का तरीका और इनकी जो स्किल्स है, जो प्रैक्टिकल थिंग्स है ना, वो आपको थोड़ी सी अडेप्ट करनी पड़ती है. और आपको जो अपने पीछे से लर्न किया होता है, आपको जो ईगो होती है वो भी थोड़ी सी साइड पे रखनी होती है. बट 6 महीने का जो मेरा था वो कोर्स था, 6 महीने के कोर्स के अंदर मैंने कुछ सब सब यूनिट्स करे थे. वहाँ के जो हमारी CIT के टीचर्स हैं और जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो क्वालिफाइड रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं. वो हमें एजुकेशन भी देती हैं, पढ़ाती भी है, और वो साथ साथ में हॉस्पिटल में काम भी करती हैं. तो ऐसा भी ऐसे कैसे कोई भी नर्स उसको वहाँ पर पढ़ा नहीं सकती, उनके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा तो भी वो आपको वहाँ पर पढ़ा सकती हैं. तो उनके जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो आपको गाइड करती हैं, क्योंकि आप बहुत ही एक बिगनर होते हो नर्सिंग के फील्ड में, एक बच्चे जैसे होते हो. तो आपको वो बच्चे जैसे एक सब कुछ सिखाना पड़ता है कि अगर आप पेशेंट्स के पास जा रहे हो तो आपको कैसे बात करनी है पेशेंट्स के साथ, अगर आपको ये वाली स्किल सीखनी है तो आपको उनके साथ कैसे ये स्किल कोऑपरेट करना होगा. क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़े लोग ज्यादा हैं, बुजुर्ग हैं वो ज्यादा हैं, तो उनसे बात करना, उनको हैंडल करना, उनको कन्विंस करना थोड़ा ट्रिकी होता है. तो आप जैसे बोलो कि आपको वो फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनकी कुछ मेंटल इश्यूज भी होते हैं कभी कभी, तो आपको उस हिसाब से पूरी एजुकेशन मिलती है. तो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे मुझे उनकी एजुकेशन के साथ उन प्लेसमेंट्स में उन्होंने हेल्प करी. तो आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आज UCH के अंदर ही काम करके कर पा रही हूँ. मैं अभी UCH के अंदर एज अ असिस्टेंट इन नर्सिंग काम कर रही हूँ. वैसे इसके लिए ये नहीं है कि अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड से हो, आपके पास अगर मेडिकल बैकग्राउंड है तभी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. ये कोई भी बैकग्राउंड से, पीछे कोई भी पढ़ाई करी हो आपने, भी कोई भी जाना असिस्टेंट इन नर्सिंग कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सीधी और स्ट्रेट स्टडी है और सीधा बिल्कुल फोकस करती है आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर. मेरे साथ खुद ही अभी ऐसी जो लड़कियां और जो लड़के काम कर रहे हैं, कुछ IT बैकग्राउंड से हैं, कुछ उनका और अलग ही बैकग्राउंड से, IT हो गया, और आप लगा लो कुछ हॉस्पिटैलिटी से हैं, तो वो एज अ इसमें एज अ काम करी है एज अ AIN, क्योंकि उनको अभी ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर के बारे में जानना है कि अगर मुझे इन फ्यूचर में नर्सिंग करनी है तो मैं पहले ये वाली जॉब करके देखूं कि मैं इजिली मैनेज कर पाऊंगी, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा.
तो हरलीन, आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती थी ज्यादातर या आपको कैंपस जाना पड़ता था?
नहीं, एक्चुअली इसके लिए हमें ऑफलाइन ही क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको ऑनलाइन नहीं हेल्प करेगा. नो डाउट वो आपको ऑनलाइन सारा कंटेंट मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं कि जिससे आपको थोड़ा आप बायोलॉजिकल मेडिकल के बारे में जान पाओ, बट जब बात आती है प्रैक्टिकल काम करने के लिए तो उनका पूरा फोकस होता है कि आपको कैंपस में आओ, हम आपको काम सिखाएंगे, हम आपको टूल्स के बारे में, हॉस्पिटल का कैसा इन्वायरमेंट होता है वो आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लगाते हो तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि आप जो यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर के टीचर को देख देख के वो सीखते हो, वो आपकी लाइफ टाइम की मेमोरी बन जाती है. सो ऑफलाइन क्लासेस आर रियली इम्पोर्टेंट है यहाँ पर.
और हलीम, क्या ये सही है कि जब आप इस ये कोर्स करते हैं तो गवर्नमेंट उसका पूरा खर्चा उठाती है?
बिल्कुल हाँ, सच ये बिल्कुल सही है. और ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने फ्री बोल दिया तो फ्री नहीं होगा. मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि जैसे मैं पहले NSW में रहती थी, वो कैनबरा का ही एक पार्ट है क्वीन बीन के अंदर, बट वो ACT गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है. तो NSW के मैं कुछ रिमोट एरिया में रहती थी जब जब शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में आई थी अपनी फैमिली के साथ. जब मैंने इनरोलमेंट के लिए पूछा CIT के अंदर, तब मेरे दोनों ही क्रॉस मार्क थे, क्योंकि तब मुझे वर्क राइट्स मिले थे. आप टूरिस्ट वीजा पे हो, आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपको कुछ वीजे पर वर्क राइट्स मिलते हैं तभी आप यहाँ पर काम कर सकते हो. तब मेरी जॉब हंटिंग चल रही थी, तब मैं इंटरव्यू दे रही थी यहाँ सभी जहाँ पर जाके, मुझे जब जॉब नहीं मिली थी. बट थोड़े टाइम के बाद मेरे हस्बैंड ने $1,800 पे किए थे, एक मंथ के बाद मुझे यहाँ पर जॉब मिल गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ACT के अंदर ही। तब मैंने उनको अपडेट करा कि देखो मैं अब ACT में ही काम करती हूँ और मैं रिसेंटली मूव हो गई हूँ ACT के अंदर ही। तो मैंने उनको ये अपडेट्स दिए तो कहते इट्स ओके, आप अगर हमें अपडेट्स दिए हैं तो हम आपका रिफंड इनिशिएट कर सकते हैं। तो मुझे उन्होंने $1,800 जो रिफंड कर दिए थे लाइक आफ्टर कपल ऑफ वीक्स के बाद ही। तो इट्स रियली ट्रूथ, लाइक मैंने इससे ये सीखा कि हाँ अगर उन्हें फ्री फ्रेट टेफ वर्ड यूज करा है, अगर आपकी कंडीशंस भी चेंज हो रही हैं लाइक महीने के अंदर ही, तो वो आपको रिफंड करेंगे। सो एक्चुअली ये सच में है कि गवर्नमेंट आपको फुली सपोर्ट करती है अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर उनके जो क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, देन डेफिनेटली वो आप इसको फ्री में पढ़ाई कर सकते हो।
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी पर हरलीन कौर के साथ हुई प्रीति जबल की बातचीत का पहला भाग। दूसरे हिस्से के लिए बने रहिए हमारे साथ SBS हिंदी पर। SBS हिंदी पर हमारी बातचीत के पहले भाग को आपने सुना, जिसके लिए धन्यवाद। ये रहा शुल्क मुफ्त टेफ यानी कि फी फ्री टेफ पर हरलीन कौर के साथ प्रीति जबल की बातचीत का दूसरा और अंतिम हिस्सा। सुनिए इसका ये अंश। शुल्क मुफ्त टेफ की पहल तब हुई जब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने राज्य और क्षेत्रीय सरकारों के साथ साझेदारी में जनवरी 2023 से प्रारंभिक 1,80,000 फी फ्री टेफ और VET यानी कि वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग स्थान प्रदान करने के लिए $1 बिलियन का 12 महीने का कौशल समझौता स्थापित किया। शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2024 तक फी फ्री टेफ ने राष्ट्रीय स्तर पर 5,68,400 से अधिक नामांकन का समर्थन किया है, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं। 62% से ज्यादा तादाद के साथ 3,54,000 से अधिक महिलाएं कार्यक्रम के तहत योग्यता प्राप्त कर रही हैं। हरलीन उनमें से एक है। अपने पहले क्राइटेरिया की बात की, क्या आप जानती हैं कि इसके लिए आवेदन करना हो या अप्लाई करना हो तो कौन पात्र होता है, हुज एलिजिबल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?
हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूं, आपके जो कुछ डिफरेंट वीजाज आते हैं लाइक मुझे तो पता ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीजा भी होते हैं। लाइक एक तो हो गया कि आपकी टेम्परेरी रेजिडेंस, जो कि मेरा वीजा था 306 वीजा नंबर, तो उस एक वीजा तो वो अवेलेबल है। और दूसरा वीजा अवेलेबल है लाइक ह्यूमैनिटेरियन वीजा और इंडिपेंडेंट स्किल वीजा, ऐसे करके कुछ वीजे होते हैं जहां पर आपको वर्क राइट्स दिए होते हैं और गवर्नमेंट इन वीजे को अंदर आपको आपको उस वीजे के अंदर होना चाहिए। और एक सेकेंड और थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर आप NSW की सरकार में से कर रहे हो फ्री फेयर टेफ, तो आपको NSW के अंदर होना चाहिए। अगर आप ACT की सरकार के अंदर कर रहे हो तो आपको ACT के में अंदर, और आप वहां पर अगर काम करते हो यहाँ पर आप वहां पर आप रहते हो, ये जो तीन चीजें इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आती है, आपको इनको फुलफिल करना होता है।
ठीक है, तो आपने अपने काम और पढ़ाई दोनों एक साथ कैसे मैनेज की?
ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर आपको करना हो कुछ भी तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले क्लियर होना चाहिए अगर आपको ये सरकार कोर्स प्रोवाइड कर रही है, अगर आपने इसमें एडमिशन लिया है तो आपने क्यों लिया है। और दूसरी रही काम की बात, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है तो आपको काम करना ही पड़ता है यहाँ पर, और डेफिनेटली मनी। मैंने ऐसा मैनेज किया क्योंकि जो मेरी क्लासेस थी वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थी, मुझे सिर्फ 3 और 4 डेज क्लास लगाने के लिए जाना पड़ता था और बाकी जो मैं अवेलेबल थी वीकेंड्स के ऊपर और कुछ 2 वीकडेज के अंदर, तो मैं वहां पर काम करती थी। क्योंकि मैं एज अ कैजुअली फार्मेसी के अंदर इम्प्लॉयड हुई थी, तो मैंने उनको बता रखा था कि मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये मेरा टाइम टेबल है, तो इसके बाद मैं अवेलेबल होती हूँ। तो उन्होंने मेरे यूनिट टाइम टेबल के साथ ही यहाँ पर मुझे इस तरह से क्लासेस प्रोवाइड कर दी थी। अगर हाँ किसी रीजन के कारण अगर मैं क्लास पे नहीं अटेंड कर पाती थी तो मैं अपने टीचर्स को भी बता देती थी कि लाइक मैं कल क्लास पे नहीं आ पाऊंगी तो मुझे मेरा मॉड्यूल ऐसे मिस हो जाएगा. तो वो मुझे कहते थे कि लाइक इट्स ओके, हम आपको इसका कंटेंट है, आप हमारी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी होती हैं, हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे ऑनलाइन, आप वो वाले रिकॉर्डिंग क्लास भी सुन सकते हो. तो ऐसे करके हेल्प हो जाती थी.
अच्छा, तो और कितना लंबा चला कोर्स?
6 months का.
अच्छा, 6 महीने लगे। तो भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है?
अभी उसी कोर्स की हेल्प की वजह से मैं अभी अपनी नर्सिंग फील्ड के अंदर काम करके कर पा रही हूँ एज अ AIN. और जो कि मैंने ये कोर्स इसलिए चूज करा था क्योंकि मुझे हॉस्पिटल के अंदर ही काम करना था, है? तो मैंने ये अब मैं हॉस्पिटल के अंदर काम कर पा रही हूँ. ऐसे इस तरह से और भी कोर्सेज हैं एज अ AIN आप काम कर सकते हो, बट मुझे ये कोर्स थोड़ा अलग लगा क्योंकि आपको एज अ AIN आपके कुछ डिफरेंट राइट्स होते हैं, आपको मिल सकते हैं. लाइक आप हॉस्पिटल के अंदर जाके BGL, जैसे अपना BP, पल्स हो गया, और क्या कहते हैं, वाइटल्स होते हैं, आप चेक कर सकते हो. और सेकेंडली आप BGL चेक कर सकते हो, लाइक किसी की शुगर चेक करनी हो. बट एज अ डिफरेंट, अगर आपने कोई और एज अ AIN कोर्स करा होता है आपको वो वाले राइट्स नहीं मिलते हैं. तो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स करते हो. अगर रही भविष्य की बात, CIT के अंदर अगर आप क्या कहते हैं, ये HSA का कोर्स करते हो, लाइक हेल्थ सर्विस असिस्टेंस, जो मैंने करा है फ्री फेयर टेस्ट के अंदर, अगर आप वो कोर्स करते हो तो आपको CIT उस यूनिट्स के क्रेडिट प्रोवाइड करती है जब आप फ्यूचर में एनरोल नर्सिंग के लिए जाते हो. एनरोल नर्सिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिप्लोमा है जो 1 साल और 6 महीने का कोर्स है, जो आप AIN एज अ EN यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम कर सकते हो. वो RN से 1 नंबर नीचे पोजीशन का होता है, बट इतना भी कोई फर्क नहीं होता. लाइक हल्की सी मनी सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट आपका जो वर्क एनवायरनमेंट होगा, जो आपके राइट्स होंगे, वो नियर बाय ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं.
अच्छा, तो हरलीन, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी जिसके लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपकी तरह कोई फी फ्री टेफ ज्वाइन करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी?
पहले अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है जिसने, जिसको पता ही है कि मुझे यहाँ पर आके पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए उसको कुछ प्री प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है. पहले तो अपना IELTS और PTE की जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो अपनी फुलफिल करके आए, क्योंकि आप किसी की दूसरी कंट्री में आ रहे हो, आपको उस कंट्री की भाषा आनी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, तभी यहाँ पर आके पढ़ाई करके आपके लिए इजीली सब कुछ हो पाएगा. नो डाउट कि सरकार ने हमारे जैसे इमिग्रेंट्स के लिए बहुत चीजें इजी करी भी हुई हैं, बट आपको अपनी तरफ से कुछ प्रिपरेशन करनी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. और सेकंड, आप ऐसा मत सोचना कि आप इंडिया से या किसी भी केरला की साइड से, साउथ इंडियन की साइड, किसी भी शहर से आए हो, कि आप अगर वहां से पढ़ के आए हो, आप लाइक डिग्री आपके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, आपने 3 साल हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ पर आकर नहीं पढ़ना पड़ेगा. आपको यहाँ पर आके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसीज हैं, जहाँ की जो प्रोसीजर्स हैं, और जहाँ की जो काम करने का तरीका है, और ऑस्ट्रेलियन का हेल्थ केयर, जो उनकी जो फ्री सब्सिडीज जो प्रोवाइड करती है, अगर आप उसकी नॉलेज लोगे तभी आपको यहाँ पर आप इजिली आप यहाँ पर सेटल्ड हो पाओगे. और थर्ड बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको यहाँ पर आके बहुत सारे चैलेंजेस तो आएंगे, बट अपनी जो आईज हैं उनको ओपन रखना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं हमको हेल्प करने के लिए. बस आपको यहाँ पर सर्च करना है और राइट ट्रैक को फॉलो करना है.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।